ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरयेत्। शन्वतां सुकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः, तदीयन्तस्त हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6, अध्याय संख्या 11, श्लोक संख्या 5। यदि वह प्रदने श्रद्धा सारम वा शुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम मे न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारं वा शुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेत् ग्राम्य सुखे स्पृहा। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेत् ग्राम्य सुखे स्पृहा। यदि वह प्रदने श्रद्धा सारं वा शुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेत् ग्राम्य सुखे स्पृहा। यदि वह तुम सबका प्रधने युद्ध में श्रद्धा विश्वास सारम धैर्य वा अथवा शुल्लकः हे नीचो हृदय हृदय में अग्रे सामने तिष्ठत जरा ठहरो मात्रम एक क्षण के लिए मैं मेरे ना नहीं चेत यदि ग्राम्य सुखे इंद्र तृप्ति में स्प्रहा आकांक्षा। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए, हे तुच्छ देवो, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो तो मेरे समक्ष क्षण भर ठहरो। तात्पर्य बढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। देवताओं को डांटते हुए वृत्रासुर ने ललकारा, अरे देवो, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं। ऐसे पुरुषों का वध करूं जो ना तो वीर है ना लड़ना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपनी शूरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। हरे कृष्ण। हे तुच्छ देवो, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है, यदि तुम इंद्र तृप्ति के कामी नहीं हो तो मेरे समक्ष क्षण भर के लिए ठहरो। ये डांट लगाई जा रही है वृत्रासुर के द्वारा देवताओं को। एक असुर देवताओं को डांट रहा। इस चैप्टर में जो है वृत्रासुर के दिव्य गुण जो है परिलक्षित किए गए हैं। तो यहां पर जो है इसका जो ट्रांसलेशन हमने पढ़ा ऊपर, यदि वह प्रदने श्रद्धा सारम वा शुल्लका हृदय अग्रे तिष्ठत मात्रा में नच गाम सुखे स्प्रहा, इसमें दो तीन शब्द आए हैं जिनको समझने से हमको जो है इस सारे प्रकरण को समझने में आसानी मिलेगी। जैसे पहला शब्द आया है श्रद्धा, तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज श्रद्धा? मैं आप पे बहुत श्रद्धा रखता हूं, मतलब मेरा आप पर बहुत विश्वास है, मेरी आप पे बहुत श्रद्धा है, मेरा आप पे बहुत विश्वास है। तो विश्वास अगर है तो उसका रिजल्ट क्या है? मैं आप पे बड़ा विश्वास रखता हूं जी, मैं आप पे बड़ी श्रद्धा रखता हूं जी, इसका अर्थ क्या है? व्हाट डज इट मीन? अगर कई बार आदमी जो है बड़े झमेलों में फंस जाता है, बड़े झगड़ों में फंस जाता है, बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ी परेशानियां हो जाती हैं, उसको एक गाइड चाहिए, उसको एक समझाने वाला चाहिए, बताने वाला चाहिए, उसका उसकी समस्या का निराकरण करने वाला चाहिए, तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिस पर उसको विश्वास होता है कि हाँ ये मेरा बुरा नहीं चाहेगा, मेरा भला करेगा। He'll do good to me. ये मेरा अपना है, ये अपना होने के नाते मेरे को धोखे में नहीं रखेगा, मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे प्रति जो भी मेरे विचार बनाएगा अपने, जो मेरा समस्या सुन के उसका समाधान करेगा, उसमें जो है ठीक राय होगी, गलत राय नहीं होगी। बिकॉज कि मेरी इस पे श्रद्धा है, मेरा इस पे विश्वास है। जब हम ऐसी श्रद्धा या विश्वास की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक्चुअल श्रद्धा और विश्वास किसके प्रति रखना चाहिए। उससे तो हमने नाता बना लिया, सांसारिक समस्या का हल हो गया, हमें पता लग गया कि इस व्यक्ति के प्रति हमने श्रद्धा रखी थी, जिसका हमें इसने ठीक से लाभ दे दिया, ठीक से गाइडेंस दे दी, ठीक से हमें हमारी समस्या का हल कर दिया, हमें धोखा नहीं दिया। बट एक्चुअल श्रद्धा जो है वो किसके प्रति होनी चाहिए, किसके ऊपर हमको श्रद्धा होनी चाहिए, किसके ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। समस्याएं आती हैं। कल ही एक समस्या आई थी मेरे सामने। मंदिर जाने वाले भक्त हैं, झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, बड़ा क्लेश हो रहा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें, परंतु मंदिर में जाते हुए भी उनको अपने पे ज्यादा विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं। बातें जगन्नाथ जी की करते हैं, बातें राधा मदन गोपाल जी की करते हैं, बातें भगवान की करते हैं, परंतु भगवान पर विश्वास नहीं है। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, मैं उसको नचा ना दूं तो बात है। अरे भाई, तुम नचाने वाले कौन हो? नचाने वाले भगवान है, अपने आप नचाते रहेंगे, तू काहे टेंशन पालता है? छोड़ सारे गोरख धंधों को, भक्ति में मन लगा। इसका नुकसान क्या है? व्हाट इज द लॉस? हानि क्या है ऐसा विचार रखने से कि आपका मन भगवान में न लग के उसको तंग करने में, उसको सताने में, उसकी खिंचाई करने में, उसको नचाने में लगा हुआ है। मन भगवान में नहीं है, मन जो है मौके ढूंढे जा रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसके ऊपर कोई ना कोई वार करूं, किस तरीके से इसकी खिंचाई करूं, किस तरीके से इसको प्रताड़ित करूं। तो रिजल्ट क्या है? आपकी चेतना जीरो हो गई, चेतना शुद्ध हो गई। चेतना में कौन होना चाहिए? श्रद्धा चेतना को प्यूरिफाई करती, श्रद्धा इज द बिगनिंग। अगर आपकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा आपकी भौतिक भोगों में है, भौतिक संसार में है, तो आपकी चेतना जो है शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? तो श्रद्धा का रिजल्ट जो है वो हमें किसमें परिलक्षित होता है? अल्टीमेटली आपकी चेतना में। और आप जो दूषित चेतना लेके अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या चाहिए? कि आपकी श्रद्धा जो है वो भगवान के प्रति पक्की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपको उनके सिवाय और कोई सूझता ही नहीं, अपने बल पे विश्वास नहीं है। आपकी चेतना शुद्ध होगी तभी आपकी भक्ति आगे प्रोग्रेस करेगी, तभी आप जो है भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनेंगे। अगर आपकी चेतना ही दूषित है, क्यों? कि अभी आपका अपने बल पे विश्वास है। और बल पे कैसा विश्वास है? उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसा जुगाड़ कर दूंगा, ऐसा जुगाड़ कर दूंगा, मेरे पास सब फार्मूले हैं, बस वो नाचे नाचे घूमेगा, वो परेशान घूमेगा, वो खून के आंसू बहाएगा, वो रोएगा। तो ध्यानपूर्वक सोचिएगा कि उसका जो मन है वो भगवान में है कि उसको प्रताड़ित करने में है। अरे भगवान जो है अपने आप उसके कर्मों का फल देंगे, तू उसके लिए ऐसा क्यों सोच रहा है? लीव इट टू हिम, तू अपनी भक्ति कर, भक्ति में आगे बढ़। कि तू भक्ति में आगे ना बढ़ के तेरे में क्या है? आकांक्षा, जो शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है, स्प्रहा, तेरे में स्प्रहा। स्प्रहा की चर्चा करेंगे अभी कि कामना के भेद क्या है। तो श्रद्धा जो है किस प्रकार की होती है? श्रद्धा दो टाइप की है, एक है स्वाभाविकी और दूसरी है बलादुत्पादिता। स्वाभाविकी श्रद्धा जो है वो आपकी आती है कि आपके स्वभाव में है, आपके स्वयं का भाव जो है श्रद्धा युक्त है, वो आती है पूर्व जन्म के साधु संघ के कारण। कि आप एक किंतु, लेकिन, परंतु, बट, लेकिन कुछ नहीं लगाते हैं, एक नेचुरल श्रद्धा है आपकी भगवान के प्रति, नेचुरल श्रद्धा है आपकी साधुओं के प्रति, नेचुरल श्रद्धा है आपकी भक्तों के प्रति। शास्त्रों में आपका स्वाभाविक विश्वास है, आप शास्त्र पढ़ते हुए नहीं करते। अभी मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप साइंस द्वारा प्रूव करिए कि भगवान है, प्रूव इट बाय साइंस। हम तो साइंटिफिक लोग हैं, हर चीज साइंस से प्रूफ मांगते हैं। मैं तो फिजिसिस्ट हूं, मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है, तो मेरा तो एक धारणा बन गई है, मेरा एक बात बन गई है कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वो शास्त्र के लिखा हो लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो इस बात से मतलब है कि ये साइंटिफिकली प्रूव होता है या नहीं होता है। तो उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति ना हो कि साइंस के प्रति है, तो भगवान को भी साइंस के माध्यम से ही जानना चाहता, उसमें स्वाभाविक श्रद्धा नहीं है। उसकी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में स्वाभाविक विश्वास नहीं है। और शास्त्रों में स्वाभाविक विश्वास, पूर्व जन्म के साधु संघ, उसके कारण श्रद्धा अगर बनती है तो उसका कारण होता है कि आप पे भगवान की अतीव असीम कृपा। बिना भगवान की कृपा के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडरेटर कौन है? आपके जीवन, आपकी लाइफ के मॉडरेटर कौन है? हु इज द मॉडरेटर? मॉडरेटर है भगवान। तो यहां पर जो श्रद्धा है, जो स्वाभाविकी श्रद्धा है, वो डेवलप होती है आपकी साधु संघ से, जो कि आपने पूर्व जन्म में किया है और आपका शास्त्रों में स्वाभाविक विश्वास है भगवान की कृपा से। दूसरी श्रद्धा है बलादुत्पादिता, बलात्, बलात् मतलब जबरदस्ती श्रद्धा पैदा की जा रही है। मन आपका नहीं है, परंतु आपके मन को परिवर्तित किया जा रहा। दो वैरायटी के लोग आते हैं, एक आता है प्रभु जी मुझे लाइफ मेंबर बना लो, मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहता हूं, और दूसरे को प्रीच कर करके प्रीच कर करके प्रीच कर करके लाइफ मेंबर बनाया जाता है। श्रद्धा डेवलप कराई जाती है, होती नहीं है फोर्सफुली। उसका मन कथा सुनने में नहीं है तो उसको प्रीच किया जाता है, एक सिटिंग, दूसरी सिटिंग, तीसरी सिटिंग, चौथी सिटिंग, सिटिंग करके अच्छा अच्छा भैया इतना कह रहे हैं चलो कथा में बैठ ही जाते हैं, चलो एक प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, चलो शाम को कथा में आ जाया करेंगे। मतलब उसमें स्वाभाविकी नहीं है कि उसने देखा अच्छा अच्छा यहां मंदिर है, यहां तो कुछ ना अंदर देखा, अच्छा कथा चल रही है, बैठ गए, अपने आप बैठ गए। फिर पूछा कब कब होती है, फिर साहब रोज सुबह 8 बजे होती है, अच्छा कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 बार आने की, हफ्ते में 3 बार आने की, फिर हफ्ते में रोज। मतलब उसकी स्वाभाविक ही श्रद्धा है, आप उसे कंपेल नहीं कर ले आने के लिए, वो ऑटोमेटिकली स्वयं ही आए चला जा रहा। परंतु दूसरे में क्या है कि बलात् उसे जो है श्रद्धा डेवलप कराई जा रही है, बलादुत्पादिता। इस कंडीशन के अंदर कॉज क्या है कि पूर्व जन्म के संस्कार नहीं। अगर पूर्व जन्म के संस्कार होते तो स्वाभाविक ही हो जाती है, इसमें जो है पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ज्ञान मिल गया तो उस पर विश्वास नहीं है, ज्ञान तो है ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। अगर किसी तरीके से शास्त्र में थोड़ा सा यहां सुन लिया बैठ के तो उस पर विश्वास नहीं है, अरे गपोड़ शंखियां ऐसी बोलते रहते हैं, ये तो किसी ने भांग पी के लिख दिया, दिस इज द फिलॉसफी। तीसरा कारण होता है बलादुत्पादिका का कि आप दूसरों का आचरण देख के, उनका संग करके, उनसे एसोसिएट करके आपके मन में परिवर्तन आता है और श्रद्धा बनती है, देयर इज अ चेंज, चेंज आता है एसोसिएशन से, चेंज आता है दूसरे का संग करने से, चेंज आता है उसके आचरण को देख के। और चौथा कारण होता है फैमिली ट्री, कुल परंपरा। अजी मेरे दादाजी वहां जाया करते थे, मेरे पिता वहां जाया करते थे, मेरे नाना जाया करते थे, मेरे सारे चाचा जाते हैं, मेरी सारी बुआ जाती हैं, हमारी परंपरा तो वहां जाके माथा टेकने की है, वहां जाके कार्य करने की है। मतलब आपके अंदर जो श्रद्धा है वो कुल परंपरा से आ रही है। तो ऐसी कुछ परंपराएं हैं जिनके अंदर जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उनकी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा एक श्रद्धा बन जाती है परंपरा के नाते, जो बलादुत्पादिका से स्वाभाविक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती जाती है, चेंज होती जाती है, आपका भाव बनता जाता है यस कि मेरे पिता करते थे तो मुझे भी करना चाहिए, वो कुल परंपरा आपका मन नहीं। हाँ बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने उस परंपरा को छोड़ दिया, नई परंपरा गढ़ी है भक्तों के संग से, प्रचार से, प्रसाद के माध्यम से, कि वो कृष्ण भक्ति में नहीं थे अब वो कृष्ण भक्ति में आ गए। तो यहां पर जो है चैतन्य चरितामृत में जो है कहा श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्वकम कृत है। कृष्ण भक्ति करने से समस्त कर्म साधनों का फल प्राप्त हो जाता है, स्वतंत्र भाव से किसी और के साधन कर्मों को करने से कोई प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों के इस वाक्य में सुदृढ़ निश्चय होना ही श्रद्धा है। कि आपको एक बात समझ में आ गई कि कृष्ण भक्ति करी तो सारा कुछ उसी में समाहित हो गया, सब कुछ उसी के अंदर है, मुझे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली किसी और की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भागवतम में कहा गया है कि पेड़ की जल के अंदर पानी डालते हैं तो समस्त पेड़ के तनों पत्तियों टहनियों टाखाओं सबको मिल जाता है, किसी को इंडिविजुअली पानी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह जब आपने ये कर लिया कि कृष्ण भक्ति करने से समस्त कर्मों साधनों का फल प्राप्त हो जाता है, अब वो कुछ और कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये श्रद्धा होना कि यस, कि आप कृष्ण की भी भक्ति करते हैं या कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, तो आंसर क्या है, कृष्ण की ही भक्ति करता हूं। ये श्रद्धा होना, आपको सारे समस्त साधन मिल गए। तो श्रद्धा का बिगिनिंग कहां से होता है? जब हम भक्ति के नौ साधनों की चर्चा करते हैं कृष्ण प्रेम तक, तो सबसे पहले क्या आती है, श्रद्धा, फिर आता है साधुसन। पर शास्त्र कहता है कि श्रद्धा डेवलप करने के लिए, इसमें भी दो भेद हो गए ना, एक स्वाभाविकी है कि श्रद्धा है तो साधु संग कर लिया, पर जो बलादुत्पादिता श्रद्धा है उसके अंदर क्या होगा, पहले साधु संग आएगा, फिर श्रद्धा डेवलप होगी। श्रद्धा डेवलप होने से साधु संग डीप हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, यस अब मुझे साधु संग हर हालत में करना है, फिर वो साधु संग जो है उसका एकदम पक्की पकड़ कर लेगा। तो बिगिनिंग कहां से होती है, बिगिनिंग होती है श्रद्धा की साधु संग से। तो साधु संग में जब अल्टीमेट क्या है, जब आप साधुओं का संग करते हैं तो उसका अल्टीमेट क्या है, उसका अल्टीमेट है कि गुरु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना। जब आप गुरु के चरण कमलों का आश्रय एवं सदाचार के बारे में जिज्ञासा करते हो, जीवन के उद्देश्य के बारे में जिज्ञासा करते हो, इसका मतलब है अब वो श्रद्धा आपकी डेवलप हो रही है। और डेवलप होने के लिए जो रूट कॉज है वो था साधु संघ। तो एक सर्किल बन गया, एक विशेष साइकिल बन गया, एक गोल बन, गोल चक्र बन गया। पहले साधु संघ हुआ, फिर श्रद्धा हुई, फिर साधु संघ हुआ, फिर साधु संघ हुआ, श्रद्धा हुई, फिर साधु संघ हुआ। तो साधु संघ होने से आपकी श्रद्धा जो है वो पक्की होती जाती है। जब आप बाकी स्टेप्स फॉलो करते हो तो फिर आप श्रद्धा से निष्ठा के लेवल पे आ जाते हो। जब आप भजन क्रिया करते हो, अनर्थ निवृत्ति करते हो, तब आपकी श्रद्धा जो है वो निष्ठा के लेवल में कन्वर्ट हो जाती है। पर बिगिनिंग कहां से होती है श्रद्धा की, साधु संघ से। तो यहां जो है चर्चा हो रही है कि अगर आपकी श्रद्धा है, यहां श्रद्धा किसमें आ रही है, यहां श्रद्धा आ रही है उसकी बल में, कि अगर आपको अपने बल में शक्ति, शक्ति में आपको अभिमान है, तब आप जो है मेरे सामने खड़े हो जाइए। अब चर्चा आती है आकांक्षा, स्पृहा। तो स्पृहा क्या होती है, इसके लिए समझना पड़ेगा कामना के सूक्ष्म भेद क्या है, व्हाट इज डिजायर। कामना का ओरिजिन, ओरिजिनल पॉइंट है डिजायर का, वो है वासना। वासना इज सूक्ष्म। अनुकूल पदार्थ आपके लिए अवेलेबल रहे, बने रहे, प्रतिकूल पदार्थ नष्ट न हो, नष्ट हो जाए, मतलब प्रतिकूल पदार्थ नष्ट हो जाए और अनुकूल पदार्थ आपके लिए बने रहे, आपके अंदर एक सूक्ष्म भाव रहता है, एक सूक्ष्म भाव मन में रहता है, यस इट शुड बी लाइक दिस। चाहे आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, उसके बाद चर्चा नहीं करते हैं, आपके माइंड में सामने स्पष्ट नहीं है, पर अवचेतन मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर ये बातें सेट हैं कि जो चीजें मेरे पास हैं, जो मेरे को फायदा दे रही हैं, मेरे अनुकूल हैं, मेरे मन के, मेरे शरीर के अनुकूल हैं, उनका लॉस नहीं होना चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए, और जो मेरे मन और शरीर के प्रतिकूल है उनको चली जानी चाहिए। अर्थात आपका राग और द्वेष, ये दोनों चीजें उसमें शामिल हैं। राग किसके प्रति है, अनुकूल वस्तुओं के, और द्वेष किसके प्रति है, प्रतिकूल वस्तुओं के। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डिजायर, ये है वासना। अब आती है इसके बाद स्पृहा, सेकेंड स्टेप है। वासना से एडवांस्ड है, कैसी एडवांस्ड है, कि अगर आपके पास अनुकूल वस्तु नहीं रही तो आपका मन बेचैन हो जाता, एक डिजायर अंदर डेवलप हो रही है, यार ये इसका ये कैसे गायब हो गई, तो होनी चाहिए थी, ये तो मेरे को सांसारिक भोगों के लिए, मेरे इंद्रिय भोगों के लिए असेंशियल थी, ये तो होनी चाहिए थी, ये कैसे हो गया, ये मेरे पास नहीं है। और चिंता में ऐसा भाव है कि मेरे लिए अति आवश्यक है, डिजायरस, कि मेरे लिए अति आवश्यक है, तो ये आपके अंदर जो है स्पृहा कहलाती, आकांक्षा कहलाती। प्रभुपाद ने शब्द दिया आकांक्षा, मतलब आप उसकी आशा करना शुरू कर देते। इसी में तीसरा स्टेप आता है इच्छा। इच्छा का मतलब है अब वो जो आपकी डिजायर थी, कामना थी, वो फुल्ली डेवलप हो गई है। अब उसका पूर्ण रूप से विकसित रूप दिखाई दे रहा है कि जिस वस्तु का आपको अभाव महसूस हो रहा था स्पृहा के अंदर, अब उसको प्राप्त करने की डिजायर हो गई। होनी चाहिए थी, अब मुझे इसे प्राप्त करना है, तो ये फर्क आ गया। एक में आपके यहां था कि मेरे पास होनी चाहिए डिजायर, उसको प्राप्त करने की कामना नहीं आई थी, उसमें क्या था, ये होनी चाहिए थी मेरे पास, ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी। आज उस गाड़ी को प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, फुल्ली डेवलप हो गई है, और जो वस्तु आपके प्रतिकूल है, आपको सूट नहीं करती है, वो या तो भाई मेरे से निकल जाए, ये मेरे पास नहीं होनी चाहिए, इसको किसी तरीके से निकालो, छुटकारा पाओ, या ऐसी वस्तु मेरे पास आ नहीं जाए, ये गलती से कोई मुझे देना दे, या मैं इसको कहीं लेना लूं, गलती से मैं इसको ना ले आऊं, वगैरह वगैरह। मतलब जो वस्तु मेरे प्रतिकूल है इंद्रिय भोगों के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, संसारिक आनंद के लिए, उसको जो है मुझे न मिलने की कामना है, प्रकट है बिल्कुल, मतलब ये चीज अपने को नहीं चाहिए, वो उतना ना बिल्कुल नुकसान देगी, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, आप इमीडिएटली उसको एक्सप्रेस करना शुरू करते हो। अब जब आपने इच्छा कर ली है, डिजायर आपकी प्रकट हो गई है, अब उससे एडवांस्ड फॉर्म क्या है, व्हाट इज एडवांस्ड टू दैट, उसे एडवांस्ड है आशा। आशा का अर्थ क्या है कि कामना पूरी हो जाएगी, इसकी संभावना दिखनी शुरू हो गई है, चांसेस आर देयर कि आई विल गेट इट। मैंने डिजायर करी कि मुझे ये मिलना चाहिए, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा वगैरह वगैरह कुछ नहीं पता था। अब मुझे बताया जी ये उन भक्त के पास है, उनसे जाके ले लो, आपको दे देंगे, तो आशा हो गया यार उनसे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, डिजायर हुई, इच्छा हुई, उसके बाद आशा में डेवलप हो गई कि नाउ योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड। अब उससे एडवांस जाएंगे तो आएगा लोभ, दे दिया ये यार, दो लोग बजाते तो अच्छा रहता है, एक और होना चाहिए, तीन बजाएं तो और अच्छा लगेगा, एक और होना चाहिए, मतलब एक गाड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी एक मकान से दूसरा, दूसरे तीसरा, एक कपड़े से दूसरा, दूसरे तीसरा, मतलब अब आपके अंदर जो है लोभ आता जा रहा है। वो कब आ रहा है, जब कामना पूरी हो जाती है तो, और जब उस कामना की, डिजायर की जो हाइएस्ट फॉर्म है, जो हाइएस्ट, दैट इज तृष्णा। तृष्णा का मतलब यह है कि आपके पास जो भौतिक संसार में भोगने योग्य वस्तुएं हैं वो यथेष्ट मात्रा में हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हैं, इनसे आप भौतिक भोग भोग सकते हो, दे आर एनफ, सीम टू बी एनफ, पर फिर भी आपके अंदर और प्राप्त करने की कामना, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये और होनी चाहिए, मतलब आपकी लिमिटलेस हो गया, लिमिट से बाहर चले गए, दैट इज तृष्णा। अब साधक में और सिद्ध में क्या फर्क है, हम कहते हैं एक साधक है, साधना कर रहा है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिसिंग भक्ति, और दूसरा जो है सिद्ध हो गया, तो दोनों में क्या भेद है। साधक के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी कामना है, कामना से छुटकारा नहीं मिला है, पर जो सिद्ध हो गया है उसमें कोई कामना नहीं है, भौतिक भोग की कहीं पर भी कोई कामना नहीं है, देयर इज नो डिजायर एट ऑल। जब हम भी जो इनके सूक्ष्म भेदों में जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है, हम किस लेवल पे खड़े हैं, हमारा लेवल क्या है, हमें, हम इस वक्त जो है स्पृहा के लेवल पे हैं कि डिजायर के लेवल पे हैं कि लोभ के लेवल पे हैं कि तृष्णा के लेवल पे हैं, हमें सोचना है क्या हमें डिजायर लेस बनना है या हमें डिजायर फुल बनना है। कई बार जो है इसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। कल ही किसी ने प्रश्न पूछा मुझे, मेरठ में लेक्चर था, परसों की बात, संडे की बात है, तो किसी ने पूछा कि हमें आपसे एक प्रश्न करना है जी, करिए। कि आप कहते हैं कि कामना नहीं होनी चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वन शुड बी डिजायरलेस, हाँ जी बिल्कुल डिजायरलेस। तो अगर हम जो है भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, ये भी तो कामना है, तो इसको भी छोड़ दें क्या? दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। जब भी हम इच्छा डिजायर की बात करते हैं तो हमारे मन में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इच्छा वो नहीं करनी है जो हमें भौतिक भोगों में बांधती है, भौतिक बंधन में बांधती है। दैट इच्छा इज नॉट रिक्वायर्ड। पर जो इच्छा हमें भगवान की सेवा में लगाती है, भगवान के प्रति आकर्षित करती है, भगवान से हमारा संबंध बनाती है और संबंध को पक्का करती है, उस इच्छा को हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपकी सांसारिक भोगों के प्रति कामना नहीं है। आपकी कामना है बिल्कुल 100% भगवान की भक्ति में जाने की, और भगवान के प्रति आपका आकर्षण दिन ब दिन बढ़ रहा है उसकी वजह से, सो दैट डिजायर इज वेलकम। वो आपको जो है होनी चाहिए, ऐसा जो है शास्त्र का क्लियर कट भाव है, उसको कभी भी मिसअंडरस्टैंड मिस इंटरप्रेट मत करिएगा, वर्ड्स को इन टोटो मत लीजिएगा। अब आती है चर्चा धैर्य की। सो धैर्य की क्या यूटिलिटी है? धैर्य किसे कहते हैं? साधारण भाषा में कि जब भी स्थितियां आपके प्रतिकूल होती हैं तो आप विचलित हो जाते हो, आपका धैर्य समाप्त हो जाता है। मतलब आपकी बुद्धि जो है वो अस्थिर हो जाती है, बुद्धि प्रॉपर फैसला नहीं कर पाती है, क्योंकि अब आप धीर व्यक्ति नहीं रहे, आप विचलित हो गए। मतलब आपको जो है उस वस्तु को प्राप्त करने में अगर समय लग रहा है तो आपका धैर्य चुक जाता है। यहां धैर्य की चर्चा होती है, जब हम पढ़ते हैं भगवद गीता को, धृति की चर्चा हो रही है, सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। अब हम उसमें जो है डिटेल्स में न जाके सिर्फ सिंपल भाषा में बात करेंगे कि भौतिक संसार के अंदर और आध्यात्मिक संसार के अंदर दोनों के अंदर धैर्य में क्या भेद है, और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। भौतिक संसार में हमें धैर्य भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम रखें कि ना रखें, कि धैर्य हमारा समाप्त हो रहा है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। भौतिक वस्तु में इंद्र तृप्ति के लिए प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमें धैर्य हो या ना हो, हमारी भक्ति के ऊपर वो एक ऑब्स्टेकल है, एक रोड़ा है, वो ही गल नहीं। आई विल वेट, मैं 15 दिन इंतजार कर लूंगा तब मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाएगी। मतलब अभी आप कामना आपकी चल रही है, अब कामना में धैर्य कर रहे हो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां सवाल ये हो रहा है कि हमें भक्ति में धैर्य होना चाहिए, और धैर्य होना चाहिए तो किस प्रकार का होना चाहिए, व्हाट इज दैट। तो उस धैर्य को हमें समझना पड़ेगा, किससे? गोपियों से। कृष्ण ने एक आशा दी कि मैं आऊंगा, आई विल कम। गोपियां जो हैं धैर्य पूर्वक उनके आने का इंतजार कर रही हैं, बेचैन नहीं हुई, विचलित नहीं हुई, हाय तौबा नहीं मचाई, शरीर नहीं छोड़ा। जब तक भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान से लेके वृंदावन तक नहीं गए रथ में विराजमान होके, गोपियों का धैर्य बरकरार था। कितना धीर थी वो, कितना धैर्य था उनमें। धैर्य का मतलब है कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल आ जाती हैं, तब आप में धैर्य है। मेरे में धैर्य है, आई कैन वेट, कोई बात नहीं, अभी सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, कोई बात चलेगा। मतलब यह सर्वर्त अनभि स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न द्विष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। बुद्धि स्थिर है कि शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं हो रहा हूं, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। मैं किसी भी सूरत के अंदर विपरीत परिस्थितियां आने पे भक्ति के मार्ग से डिग नहीं रहा हूं, भक्ति के मार्ग को विचलित नहीं हो रहा हूं, भक्ति के मार्ग को छोड़ नहीं रहा हूं। देखो जी, मेरे को उसने मोलेस्ट किया है, उसने मेरे पे जो है पार्टी के अंदर मुझे तंग किया था। एज ए गर्ल आई वॉज मोलेस्टेड। मैं मंदिर जाती हूं, मैंने भगवान के सामने प्रण किया है 1000 माला करूंगी, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, 1000 माला पनिशमेंट नहीं मिली तो भक्ति छोड़ दूंगी। ये क्या बात हुई भाई, कौन सा धैर्य है ये? धैर्य की अल्टीमेट पराकाष्ठा क्या है? अल्टीमेट कि मेरे में इतना धीरज है कि मैंने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। ठाकुर जी आप जानो, आपका काम जाने, मेरा तो काम आपका भक्ति करना, मैं कर रहा हूं बस। स्थितियां अनुकूल बन रही हैं तो आप कर रहे हो, प्रतिकूल बन रही हैं तो आप कर रहे हो, मतलब यू आर फुल्ली सरेंडर टू हिम। दिस इज द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन। या में धैर्य तो है, उसकी हाईएस्ट लिमिट है कि मैं करने वाला कौन हूं, हु हूम आई टू डू, आई एम नोबडी। कौन करेगा, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, हो गया बात खत्म हुई, चलो जी आगे बढ़ जाओ, छोड़ो पर इस बात को। I am not disturbed, I am not distracted, I am not worried. Means आपने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। आप अपने बारे में खुद बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं। जो करेंगे भैया वो करेंगे, अनुकूल परिस्थिति भी वही देते हैं और टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति भी वही देते हैं। दोनों परिस्थितियां उन्हीं की दी हुई तो मुझे काहे की चिंता, वाई शुड आई बी बॉदर्ड। कहते हम जरूर हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करते क्या हैं उल्टा से, सब कुछ लागे मेरा, मैं बड़ा चिंतित। तो चिंता न, चिंता छोड़ के, कष्ट छोड़ के, परेशानियां छोड़ के, विचलित होना छोड़ के, आपका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हर हालात में, अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर परिस्थिति में शो करता है कि आप कितने धीरवान पुरुष, आप में कितना धैर्य है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो। देखो क्या क्या टॉलरेशन पावर है, सहता चला जाता है, सहता चला जाता है, उफ तक नहीं करता। मतलब उसमें कितना धैर्य है भक्ति प्राप्त करने का, कितना धैर्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब भी वो परेशान नहीं होता, उनको एक्सेप्ट कर लेता है, उनको स्वीकार कर लेता है, एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होता। तो वो लेवल जो है धैर्य होने का, डिटर्मिनेशन का, हमें आना चाहिए। अगर वो लेवल आएगा तभी हम जो है भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे और भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए हम पे असंख्य प्रहार करवाते हैं माया के द्वारा, पर हम जो है उन प्रभावों से तुरंत विचलित हो जाते हैं। यार मैंने ही कुछ सारे पाप काम किए थे कि सारे कष्ट मेरे पे ही आए जा रहे हैं और किसी पे नहीं आ रहे हैं। अब इनडायरेक्टली सोचो कि अगर मुझ पे ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे को ज्यादा तपाया जा रहा है। जैसे आप सोने को जो है कुंदन में कन्वर्ट करते हो तो टेम्परेचर जाता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं हाँ अब ये पूरे तरीके से तप गया है, अब मेरे घर आ सकता है, मुझे अशुद्ध चेतना वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय और कोई चीज थी, जिसकी भक्ति व्याभिचारिणी थी, जिसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई और एक क्षण के लिए भी आ गया, वो मेरे घर आने के योग्य नहीं है। मैंने माया को बहुत बार भेजा एग्जाम लेने के लिए, परंतु हर एग्जाम में ये फेल होता रहा, तो मेरे घर कैसे आएगा? जरा सी बात में विचलित हो जाता है। इसको विचलित नहीं होना है। जब वो विचलित नहीं होने की स्थिति में आता है, तपता रहता है, तपता रहता है, तपता रहता है, उसको उठाली में सोने की भांति कि अल्टीमेटली जो है उफ तक नहीं करता और अल्टीमेटली उसमें से कुंदन निकल आता है, फिर आप कहते हो यस दिस इज कुंदन प्यूरिफाइड गोल्ड, अब इसको आप जेवर बनाइए। भगवान कहते हैं ही इज अ प्यूरिफाइड डिवोटी, इसका श्रद्धा पूर्ण है, इसकी धैर्य पूर्ण है, इसकी डिटर्मिनेशन पूर्ण है, इसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई नहीं है, अब ये मेरे घर में आने के योग्य है, नाउ ही विल कम टू माय अबोट। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की, हाँ पूछो प्रभु जी। भगवान आपके लिए क्यों अरेंजमेंट करेंगे अगर आप प्योर हो तो? अगर आप प्यूरिफाइड हो, अगर आप प्योर हो, तो भगवान जबरदस्ती आपको क्यों माया के जाल में धकेलेंगे? जो भी हमारे पास परिस्थितियां आ रही हैं, हमारे कर्म फल हैं, वो कर्म जनित हैं। उन परिस्थितियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भगवान ने दे रखा है, आपको अरेंज करना है। भगवान थोड़ा कर रहे हैं, भगवान ने तो आगे अपनी पावर्स को डिप्यूट कर दिया। यस, ही विल कैरी फॉरवर्ड माय पावर्स नाउ। इनको दुख देना है, दुर्गा जी की ड्यूटी लगा दी। भैया इसको ताप, तीन त्रिशूल है तुम्हारे पास, तीन ताप है, मारते रहो, टेस्ट करते रहो इसको अच्छे तरीके से। तो वो ओरिजिनली जो है सारी प्लानिंग किसकी है? टॉप पिरामिड की टॉप पे कौन बैठे हैं? भगवान। और नीचे पिरामिड में जो है डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट जो है देवी देवता वो बैठे हैं आपको टेस्ट करने के लिए। अलग अलग परिस्थितियां आपको देते हैं, जो आपके पुण्य कर्म है उसके अनुरूप आपको भौतिक संसार के अनुरूप जो है अच्छी अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, जो आपके पाप कर्म है उसके अनुसार आपको जो है बुरी परिस्थितियां मिलती हैं। जब व्यक्ति जो है पुण्य कर्म करता है तो भोगने को शरीर चाहिए, पाप कर्म करता है तो भोगने को शरीर चाहिए। इसका मतलब है ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, दोनों से बाहर निकलना चाहिए। तो कौन सा चाहिए? मत कर्म कृत, मेरे लिए कर्म कर, कार्य कर ही मेरे लिए और किसी के लिए कर ही मत। अकर्म में कर्म दे, कर्म में अकर्म दे, यही तेरा फैसला, यही तुझे करना। तो डेफिनेटली जो हमारी स्थितियां आ रही हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर कर्म फल। वो कर्म फल का जनरेशन जो है अल्टीमेटली कोई ना कोई देवी देवता जिसके लिए परिस्थितियों के लिए अनुकूल है वो जनरेशन हो रहा है। जनरेशन कब होगा? अब किसी ने कहा कि साहब मेरे को जो है अपना इस आयु में कष्ट मिल रहा है, मुझे 10 साल पहले मिल गया होता, मुझे 10 साल बाद मिल गया होता, आज ही क्यों मिल रहा? तो अगर आप जो है कभी भी जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, कृष्णा साइंस है, ये मैन मेड साइंस नहीं है, ये हर चीज प्लान्ड है। उस साइंस के अंदर जो है अब भगवान ने स्थापित किया है कि भाई ये आपका कर्म फल अब जनित होना है। वो आपको पता लग जाए कब जनित होना है उसके लिए स्टार्स का सिस्टम बनाया कि जब ये स्टार आपकी लाइफ में आएगा एक पर्टिकुलर इफेक्ट करेगा तब ये कर्म फल फ्रक्टिफाई होगा, तब ये कर्म फल पकेगा। आप कितनी उम्र में भगवत भक्ति में आए? क्या आयु थी? तुम कितनी उम्र में आए? 17 साल की उम्र में। वो आपका जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, किस उम्र में फ्रक्टिफाई करने हैं उसको भगवान ने एक हॉरोस्कोप के अंदर डायमंड मार्केट कर दिया है, कौन सा फल कब प्राप्त होना है। इनको 17 साल की उम्र में मिलना था, तुमको 34 में मिलना था, तुमको गृहस्थाश्रम में मिलना था, इनको ब्रह्मचर्य में मिल गया। समझे? नहीं, हर चीज जो है आपके कर्म फलों के अनुसार प्लान्ड है और प्लानिंग के लिए भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है। डेट्स कब होने वाली हैं वो आपके हॉरोस्कोप में लिख दिया, ये फल आपको कब प्राप्त होने वाला, आपके कर्म फल बनने हैं। आपसे बोला भैया आप तो कीर्तन कर सकते हो प्रवचन के रूप में, वो आपका कर्म का फल है। मृदंग बजाने आती है इनको? तो आती है। भक्त ये भी कहलाते हैं, भक्त तुम भी कहलाते हो, दोनों डिवोटी हैं, दोनों डिवोटी हैं। उनके लिए भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा जनरेट किया हुआ है बिकॉज उनके कर्म फल ऐसे हैं, जो प्रवचन भी कर लेते हैं, मृदंग भी बजा लेते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं, करताल भी बजा लेते हैं, झांझ भी बजा लेते हैं। तुमसे पूछेंगे बोलेंगे मैं तो सिर्फ करताल बजा सकता हूं, मुझे और कुछ आता ही नहीं।
या बोल सकता हूं।
तो हरेक का कर्मफल जो है, जो इस युग के अंदर प्रतिफलित हो रहा है, जो बन के आ रहा है, वो सब प्लानिंग ऊपर से है। हमें उतनी ही पावर दी गई है जितने के हम योग्य हैं, हमें हर पावर नहीं दी गई, समझे नहीं। तो ये सारा प्लानिंग टॉप लेवल से आ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। नहीं देखिए ऐसा है, कुलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि इस जन्म के अंदर जो आपने प्राप्त किया है अपने कर्म फलों के अनुरूप प्राप्त किया है, वो कर्म फल आपको इस जन्म में भोगने ही हैं। अगर आप उन कर्म फलों को कहो कि समाप्त हो जाएं, तो आपके भोग समाप्त हो जाएंगे, तो आपका शरीर छूट जाएगा। वो जब जब फ्रक्टिफाई करने हैं तभी फ्रक्टिफाई होने हैं। 50 साल की उम्र में जाके फॉल डाउन हो गए, होता है नहीं होता? महापुरुषों का, सन्यासियों का, वैष्णव हो जाता है ना, सन्यासी से ग्रस्त में आ गए। ये कर्म फलों के अनुरूप है, इस जन्म के अंदर जो कर्म फल मिलने हैं वो हमको मिलने हैं, उनका कभी ना कभी प्रतिफलित होता है। हाँ ये इफेक्ट है, इफेक्ट कम होता जाता है, बिकॉज जज्ञा भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, मन परिवर्तित हो जाता है, चेतना शुद्ध होती जाती है, कर्म फल उसी हिसाब से डाउन आते जाते हैं। परंतु जिस दिन कर्म फल समाप्त हो जाएंगे उस दिन शरीर समाप्त हो जाएगा। दैट इज द सिंपल प्रोसेस, कर्म फल खत्म, शरीर खत्म। तो जो भक्त ने, जिसने प्रचार करना है, उसके लिए जितना प्रचार के लिए लिखा है, जितना शरीर को भोगना लिखा है, उतना शरीर उसे प्राप्त होना है। भक्त ऐसे हैं जो 50 में चले गए, भक्त ऐसे हैं जो 25 में चले गए, भक्त ऐसे हैं जो 75 में चले गए, भक्त ऐसे हैं जो 85 में बैठे हुए हैं। हर एक के अपने अपने कर्म फलों का एक जनरेशन है, जो उसने किया हुआ है उसी के अनुसार उसको उसका फल प्राप्त होता रहता। हरे कृष्णा। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, वो जब अगला शरीर धारण करता है तो उसका कॉज क्या है? कर्मफल। कर्मफल अभी समाप्त नहीं हुए, भोगने के लिए शरीर धारण करना। जब कर्मफल समाप्त हो जाएंगे, चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मफलों को जलाकर भस्मसात कर देती है। मिस ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान के ऊपर चले, अप्लाई किया ज्ञान को लाइफ में। परंतु बलदेव विद्याभूषण स्पष्ट कहते हैं कि अगर इस जन्म में कर्मफल समाप्त हो जाएंगे तो आपका शरीर तुरंत छूट जाएगा। कर्मफल खत्म हुए, शरीर खत्म। और कर्मफल अगर आपके फ्यूचर वाले समाप्त हो चुके हैं, जो कि अप्रारब्ध हैं, रूढ़ हैं, बीज हैं, वो समाप्त हो गए हैं भक्ति के द्वारा, और जो इस जन्म के हैं आपके समाप्त हो गए तुरंत, तो आपका मन बुद्धि अहंकार से छुटकारा हो गया, फिर आपके जो है कर्मफल आगे कैरी फॉरवर्ड तो होने नहीं है। इसका मतलब है आप सीधा धाम चले गए, बात खत्म हो गई। परंतु कर्मफल की समाप्ति इज ए डिफिकल्ट टास्क, नो डाउट, बट कैन बी अचीव्ड बाई सरेंडर। शरणागति इज द अल्टीमेट माध्यम। उस शरणागति की बिगनिंग कहां से हो रही है? डिवोटी एसोसिएशन से बिगनिंग, यहां से। क्योंकि भक्त का संग ही आप में श्रद्धा पैदा करेगा, और श्रद्धा पैदा करेगा तो भक्त का संग करके आप निष्ठा के लेवल में पहुंचोगे, तब आप ऊपर जाओगे। तो डिवोटी एसोसिएशन इज द बिगनिंग। जिस दिन वो एसोसिएशन शुरू हो गई ढंग से, उस दिन आपका जो है जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की।